24 जून दिन मंगलवार, दिन भर के साथ मैं रेहान फजल। क्रीज का कहना है कि वो अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा, लेकिन उसको दिवालियेपन से बचाने के प्रयास अभी भी जारी। ग्रीस के वित्त मंत्री विरोफकीस,
अυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσουμε με νυφαλιότητα και εναρμονία το δικαίωμα του ελληνικού λαού.
बात करेंगे झारखंड की बिन ब्याही आदिवासी लड़कियों के शारीरिक शोषण और उनके बच्चों की।
दूसरे के प्रलोभन पे, साग बाग पे जो दिल्ली चले जाए, कहीं गोवा चले गए, बॉम्बे चले गए, वहाँ लोगों के साथ अवैध रूप से जो संबंध होता था, उसी से जो बच्चा हमारे यहाँ जो पैदा हो रहा है और वो सीधा घर आ रहे हैं और आज ये माँ बाप के ऊपर छोड़ जा रहे हैं।
ले चलेंगे आपको विंबलडन भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। ग्रीस ने इस बात की पुष्टि की है कि वह आज अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा। इस बीच ग्रीस को दिवालियापन से बचाने की कोशिशें जारी हैं। ग्रीस को इस संकट से उबारने वाले प्रस्ताव की अवधि भी मध्य रात्रि को खत्म होने वाली है। यूरोपीय संघ का कहना है कि उसने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का जो सुझाव पहले ग्रीस के सामने रखा था, वह अब भी खुला है, लेकिन समय सीमा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ग्रीस रविवार को इसी प्रस्ताव पर जनमत संग्रह करवा रहा है। सरकार चाहती है कि जनता इस डील को खारिज कर दे। इंडोनेशिया के अधिकारियों का कहना है कि मेदान शहर के रिहायशी इलाके में सेना का एक परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की आशंका है। 49 शवों को निकाला जा चुका है। बचाव और राहत कार्य जारी है। अधिकारियों के मुताबिक 4 इंजनों वाला हरक्यूलिस विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही गिर गया और इसकी चपेट में घर और दुकानें आ गईं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक मलबे में अब भी कुछ लोग फंसे हैं। विमान के गिरने की वजह साफ नहीं है, लेकिन वायुसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि विमान के पायलट ने तकनीकी खामी की वजह से विमान उतारने की अनुमति मांगी थी। ईरान के विदेश मंत्री जावद जरीफ ने कहा है कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया के बड़े देशों से ईरान की बातचीत नाजुक मोड़ पर है, लेकिन उनका मानना है कि समझौता हो सकता है। वियना में अमरीका, जर्मनी, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों से बातचीत करने से पहले उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अभी इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत बहुत नाजुक मोड़ पर है। हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और अभी इस पर बहुत काम करना बाकी है। ये थे ईरान के विदेश मंत्री जावद जरीफ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आत्मघाती हमलावर ने नेटो के सैन्य दल को अपना निशाना बनाया है। इस हमले में कम से कम एक नागरिक की मौत हो गई है और 22 घायल हुए हैं। दोपहर में नमाज के वक्त नेटो के सशस्त्र वाहनों को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान के नेटो मिशन का कहना है कि उनके रक्षा बलों में कोई हताहत नहीं हुआ है। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले शहर में एक अन्य बम विस्फोट में 2 बच्चे घायल हुए। अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित हेलमंड में एक कार बम विस्फोट में कम से कम 2 नागरिक मारे गए हैं और 40 घायल हुए हैं। यमन की राजधानी सना में एक कार में बम विस्फोट हुआ, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हमला एक सैन्य अस्पताल के पास हुआ। चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले का निशाना 2 हूती विद्रोही नेता थे, जो एक शोकग्रस्त परिवार की एक रस्म में शामिल हुए थे। लाइबेरिया में 7 हफ्ते बाद फिर इबोला बीमारी का हमला हुआ है। उप स्वास्थ्य मंत्री टोलबर्ट नेंसवा ने बताया कि जांच में एक 17 वर्षीय लड़के की इबोला से मारे जाने की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि मरीज का शव सुरक्षा पूर्वक दफना दिया गया है और घबराने की कोई बात नहीं है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। ग्रीस का कहना है कि वो समय से अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा। इस बीच ग्रीस को दिवालियापन से बचाने के प्रयास जारी हैं। ग्रीस को 1.6 बिलियन यूरो के कर्ज का भुगतान करना है। यूरोपीय संघ का कहना है कि उसने समझौते को आगे बढ़ाने का जो प्रस्ताव पहले ग्रीस के सामने रखा था, वो अब भी खुला है, लेकिन समय सीमा धीरे धीरे खत्म हो रही है। पूरी जानकारी के साथ सुशीला सिंह।
ग्रीस ने कर्ज संकट का समाधान निकालने के लिए अब से थोड़ी देर पहले आज एक बैठक की। इस बैठक में माना गया कि ग्रीस समय पर अपना कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता है। ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाने की समय सीमा से बस चंद घंटे दूर है। उधर देश के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास का कहना है कि कटौती के खिलाफ होने वाले मतदान से ग्रीस इस संकट पर अपनी बात सही तरीके से रख सकेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि और कटौती देखने के लिए वह पद पर नहीं बने रह सकते। उधर ग्रीस के वित्त मंत्री योनिस वेरिफकीस का कहना है कि रविवार को ग्रीस को इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए होने वाला जनमत संग्रह योजना के तहत होगा। यूरोप इस जनमत संग्रह को स्थगित कराने के लिए ग्रीस पर लगातार दबाव बनाए हुए है। वहीं एथेंस में नो वोट को लेकर प्रचार किया जा रहा है ताकि ग्रीस अपनी शर्तों पर डील कर सके, लेकिन कई यूरोपीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो ग्रीस को यूरोजोन छोड़ना होगा। उधर वित्त मंत्री वेरफकीस का कहना है कि सरकार जनमत संग्रह के फैसले पर कटिबद्ध है।
हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि रविवार को जनमत संग्रह हो रहा है जिससे कि हम लोगों की बात सुन सकें। ये इन लोगों का अधिकार है और यूरो समूह के देशों ने बैंकों को बंद करवा कर ये अधिकार छीनने की कोशिश की है। ग्रीस के लोग ये चाहते हैं और हम उनको ये अधिकार दे रहे हैं। ये हमारा मकसद है कि लोग अपना मत बताएं कि वो कर्जदाताओं के प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि सोमवार से ही हम ग्रीस के समाज और अर्थव्यवस्था के लिए एक समाधान निकाल सकें।
उधर स्पेन के प्रधानमंत्री मैरियानो रजॉय ने ग्रीस को चेतावनी दी है कि अगर वो जनमत संग्रह के दौरान कर्जदाताओं के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करता है तो उसे यूरोजोन छोड़ना होगा। उनका कहना था कि इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान एक सही विकल्प होगा।
अगर इस जनमत संग्रह में ग्रीस के प्रधानमंत्री हार जाते हैं तो ये ग्रीस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ग्रीस यूरोजोन में रहना चाहता है। इससे अगली सरकार से बातचीत करना संभव होगा। अब अगर इस जनमत संग्रह में वो लोग जीत जाते हैं तो इससे ग्रीस के पास यूरोजोन को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
वही लोग ग्रीस की ताजा स्थिति से चिंतित हैं। रोसमेरी का कहना था, मेरा मानना है कि ग्रीस के पास काफी समय था। उसके पास स्थिति को बदलने और कुछ करने के लिए 5 महीने थे, लेकिन वो सहमति को आगे बढ़ाते रहे और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और लगातार कुछ नई योजना लाने की सोच ने लोगों पर दबाव डाला। उधर डर्क वेगनर का कहना था,
मैं इस स्थिति से चिंतित हूं क्योंकि ग्रीस में लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस चीज के लिए वोट डाल रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि काफी पेचीदा है और यूरोप के लिए ये अस्थिरता की स्थिति है।
जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल का कहना है कि ग्रीस को इस संकट से निकालने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है, लेकिन बातचीत जारी रहेगी।
इस बीच खबरें आ रही हैं कि ग्रीस ने यूरोपीय संघ के सामने संकट से उबरने का एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें ग्रीस की कर्ज की विशाल राशि में कुछ बदलाव भी शामिल है। चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में। मैंने थोड़ी देर पहले अमर उजाला के मुख्य संपादक एमके वेणु से संपर्क किया और पूछा कि ग्रीस के इस आर्थिक संकट का भारत पर कुछ प्रभाव पड़ते हुए देखते हैं आप?
अगर ग्रीस यूरो से बाहर जाता है तब असर आएगा, जो अभी संडे को ही पता लगेगा जब रेफरेंडम होगा, मगर अभी से ही थोड़ा सा फियर तो है कि अगर ग्रीस चला गया तो बाद ये डर है कि यूरोप के बैंकों में इसका थोड़ा असर होगा। बड़े बैंक जो यूरोप में हैं, जर्मनी के बैंक हैं और जो बड़े बैंक हैं, क्योंकि उन्होंने भी ग्रीक गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह काफी खरीदे हुए हैं और कुछ फाइनेंशियल टाइटनिंग हो सकता है। जिस तरह 2008 में आपने देखा था जब अमेरिका में हुआ था तो एकदम से फ्रीज हुआ था एक फाइनेंशियल छोटे समय के लिए, 4-5-6-8 महीने के लिए। खैर इस बार इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ग्रीस छोटी इकोनॉमी है, मगर इसका असर ये हो सकता है कुछ यूरोपीय बैंक जो है वो हिंदुस्तान को जो कर्जे में पैसा देती है उसमें थोड़ी टाइटनिंग हो, इससे ब्याज दर बढ़ सकते हैं इंडियन कंपनीज के लिए, और ये हमारे वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी ने भी ये बोला है। और अगर वो हुआ तो थोड़ा इंडिया को जो डेट जो फ्लो है इंडिया में यूरोपीय बैंक से उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और
कैपिटल आउटफ्लो कुछ हो सकता है यहाँ से, यहाँ लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है वो हटा सकते हैं इस क्राइसिस की वजह से।
देखिए ऐसा कोई भारी कैपिटल आउटफ्लो नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ग्रीक जो है वो यूरोपीय इकोनॉमी का केवल 2% इकोनॉमी है और उसका जीडीपी भी खास है नहीं, 240 बिलियन डॉलर जीडीपी है, मगर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे असर नहीं होगा। मगर फाइनेंशियल जो फ्लोज है उसमें थोड़ी बहुत जो फ्लो आता है इंडिया में वो थोड़ा कम हो सकता है, हालांकि मेरे ख्याल आउटफ्लो इतना नहीं होगा और महंगा हो सकता है पैसा। एक आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा इस संदर्भ में कि करीब 40% से ऊपर जो डॉलर जो लोन इंडियन कंपनी देती है वो यूरोपीय बैंक्स के जरिए आता है, क्योंकि यूरोपीय बैंक्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में उनका काफी उनका बोलबाला है, वो दिक्कत हो सकती है और फाइनेंशियल फ्लोज कम हो सकती है और उस वजह से थोड़ा स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, ज्यादा नहीं मतलब 5-7% गिर सकता है अगर वैसी कोई स्थिति आई तो। और इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जो है वो अगले इस साल 6-8 महीने में रहेगा।
ये थे अमर उजाला के मुख्य संपादक M.K. वेणु। माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में जेल में बंद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.N. साई बाबा को बम्बई हाईकोर्ट ने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 3 महीने के लिए जमानत दे दी है। साई बाबा को महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले साल मई में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस से गिरफ्तार किया था। थोड़ी देर पहले मैंने नागपुर संपर्क कर वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश दुबे से बात की और इस फैसले का विवरण मांगा।
देखिए, बीते शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह संकेत दे दिया था कि इनको बेवजह यहाँ पर रखने का कोई तुक नहीं है और उनको जमानत दे दी जाती है, बल्कि ये बहुत स्पष्ट हो गया था क्योंकि उसमें मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायमूर्ति A.K. मेनन दोनों की खंडपीठ थी और उन्होंने सीधे सीधे प्रश्न किया था सरकारी वकील से कि भाई एक प्रोफेसर है उसको छोड़ने के बारे में, जमानत देने के बारे में विचार क्यों नहीं करते। और जब सरकारी वकील ने यह कहा कि नहीं भाई उनके खिलाफ तो काफी सबूत है, तो उन्होंने कहा था कि सबूत है उनकी आप कार्रवाई करें यह तो समझ में आता है, लेकिन उनके उपचार को लेकर क्योंकि उनका परिवार दिल्ली में है, उपचार को लेकर अगर परिवार को किसी तरह की कोई चिंताएं हैं तो उसके बारे में तो ध्यान देना चाहिए। इसके बाद भी सरकारी वकील ने इसका विरोध किया था। उनका ये कहना था कि देखिए आज जिस तरह की चिकित्सा सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं तो वो दिल्ली में रहे या नागपुर में इससे क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि सरकार उनके स्वास्थ्य का उन समय समय पर उनके हर चीज का पूरा ध्यान रख रही है।
तो अभी उनको तुरंत छोड़ा जाएगा या अभी आने वाले दिनों में उनकी रिहाई होगी, कुछ इस तरह के संकेत मिले हैं?
देखिए, जिस तरह से शुक्रवार को ही कोर्ट ने कहा था उसके बाद पुलिस को इनको ज्यादा समय तक रखना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि शुक्रवार को ही सरकारी वकील से ये भी पूछा गया था क्या आप ये बताइए कि प्रोफेसर उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में तो आप और बहुत सारे लोग जो उनके बारे में जानते हैं उससे अवगत हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप बताइए कि किस कारण से, किस आधार पर आप ये कहते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनसे किसी को भी सुरक्षा के लिए खतरा है।
तो कोई टिप्पणी आई है इस फैसले पर उनके रिश्तेदारों ने या माओवादी आंदोलन की तरफ से किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है इस फैसले पर?
अभी तक तो हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग इस मामले में सक्रिय थे और ये भी लोगों को जानकारी होगी कि पूर्णिमा उपाध्याय नाम की महिला ने यह मामला आगे बढ़ाया था और उन्होंने इसके बारे में याचिका दी थी और उनकी वकील जो है वो भी एक बहुत नामी व्यक्ति है, मुंबई की नामी वकील है, तो उन्होंने उस समय एक तर्क दिया था जो शायद एक तरह से समझ सकते हैं कि माओवादी और उनके हिमायतियों की प्रतिक्रिया मानी जा सकती है। उन्होंने ये कहा था कि एक व्यक्ति जो प्रोफेसर है जिसकी ये स्थिति है उसके इलाज पर अभी तक 1,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है, ये उन्होंने अपनी दलील दी थी। और यहाँ पर जो संगठन है उन्होंने अभी तो नहीं लेकिन इसके पहले समय समय पर वो ये मांग करते रहे हैं कि देखिए उनको इस तरह से लगातार रोका जाना ठीक नहीं है, जिसमें कुछ गांधीवादी संगठन है जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, एक महाशय है यहाँ पे श्री खैरनाथ, उन्होंने भी ये कहा था कि मानवीय आधार पे उनको जमानत दी जानी चाहिए।
ये थे नागपुर से पत्रकार प्रकाश दुबे। कांग्रेस ने धौलपुर पैलेस की मिल्कियत को लेकर आज 4 दस्तावेज मीडिया के सामने पेश किए और इसकी वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत की संपत्ति होने के दावे को झूठा करार देते हुए इसे राजस्थान सरकार की संपत्ति बताया। साथ ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उनसे फिर स्पष्टीकरण मांगा है। सुबैर अहमद की रिपोर्ट।
आज लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ इल्जामों का सिलसिला जारी रखा। कल उन्होंने सिटी पैलेस धौलपुर की मिल्कियत पर सवाल उठाया था। आज उन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए मीडिया वालों के सामने 4 दस्तावेज रखे। उनका कहना था कि सिटी पैलेस धौलपुर की मिल्कियत वसुंधरा राजे की नहीं बल्कि इसका मालिक राज्य यानी राजस्थान सरकार है।
जिस सामंतंत्र तरीके से सरकारी संपत्ति को निजी जायदाद में बदला गया है, मैं समझता हूँ धोखा है, घोटाला है, छल कपट है।
इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया।
नैतिकता के मसीहा हमारे प्रधानमंत्री जी, माने नैतिकता के सेल्फ डिक्लेयर्ड मसीहा, खुद स्वघोषित मसीहा, इसके बाद भी अगर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पर कुछ देखेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये साफ हो गया है कि वो एक दिखावा है और नैतिकता के वकालत करने वाले को कोई हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री और अपने विदेश मंत्री के खिलाफ।
उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले का क्लोजर नहीं हो जाता तब तक पार्टी डिस्क्लोजर करती रहेगी। क्लोजर का एक ही रास्ता है और वो है वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना। उधर भाजपा ने भी धौलपुर पैलेस पर सफाई दी है। पार्टी का कहना है कि ये दरअसल 1949 में धौलपुर के राजा को केसर बाग दिया गया। वर्ष 1958 में सरकार ने केसर बाग वापस ले लिया और बदले में उन्हें धौलपुर सिटी पैलेस दिया गया। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत के वकील का कहना है कि धौलपुर हाउस उन्हीं के नाम है। लेकिन जब जयराम रमेश से पूछा गया कि ये सारा मामला जब सामने आया तो सरकार आप ही की थी यानी कांग्रेस की थी, तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा,
बिल्कुल सही, हमारी सरकार वहाँ, हमारी सरकार यहाँ, और शीघ्र भी वही होने वाला है, वहाँ भी यहाँ भी हमारी सरकार आने वाली है। पर बार बार आप ये सवाल पूछ रहे हैं, कितना जमीन अधिग्रहण हुआ है? 600 मीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं। अरे 2 करोड़ मिला, वो जिसको मिला है उनसे पूछिए।
जयराम रमेश ने आईपीएल के भूतपूर्व बॉस ललित मोदी पर मॉरिशस की एक फर्जी कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगाया है, लेकिन ललित मोदी इन सभी इल्जामों को खारिज कर चुके हैं। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
ये बीबीसी है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों को संवैधानिक मान्यता दिए जाने के 1 साल बाद आज देश भर से करीब 400 ट्रांसजेंडर लोग राजधानी दिल्ली में जुटे। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्या भी वहां गईं। दिव्या इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बताएं दिव्या, क्या कहते हैं वो लोग कि इस नए अधिकार से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है?
कई लोगों ने बहुत खुल के मुझसे बात की रेहान जी, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा परिवर्तन उनके लिए यह है कि समाज में उनकी इज्जत बढ़ी है। वो कह सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मान्यता उन्हें मिली है। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इन लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर नौकरियों, स्कूल कॉलेज में दाखिलों, स्वास्थ्य सेवाओं में योजनाएं, इस तरह की मदद की बात की गई थी, और सरकार ने अभी इसे नहीं माना है। बल्कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास वापस गई है और उसने कुछ स्पष्टीकरण मांगा है इस फैसले को लेकर। तो हमने बात की समाज कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत से।
जैसे उसमें इनको ये छूट दी है कि ये चाहे तो मेल हो जाए, ये चाहे तो फीमेल में अपना नाम लोग लिख दे, और एक तरफ वो थर्ड जेंडर में भी रखने की बात है। फिर कुछ लोगों का ये भी सुझाव है कि बायकास्ट, कोई SC है, कोई OBC है, कोई ST है, तो ऐसी स्थिति में इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो ये रिव्यू पिटीशन लगी हुई है। रिव्यू पिटीशन का निर्णय आते ही जब परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और जो विधेयक पास होने वाला है, बिल पास होने वाला, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे, नियम बनाएंगे।
तो समाज कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि जल्द ही ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के लिए खासतौर पर एक कानून लाया जाएगा जो पहले ही राज्यसभा में पारित हो चुका है। इसी में धारा 377 जो समलैंगिक संबंधों को गैरकानूनी करार देती है उस पर भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मिलने वाली सुरक्षा से परे मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो अपने बलबूते पर अपनी ट्रांसजेंडर पहचान के बावजूद समाज में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे संजना राम जो कोलकाता के एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाती है। उन्होंने मुझसे अपनी आपबीती बांटी।
हमें सुप्रीम कोर्ट का वेट का या फिर किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि ये हमारा अधिकार है और हमें अपने आप पे भरोसा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने जितनी भी उपलब्धियाँ हासिल की है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाना, एक गवर्नमेंट स्कूल में काम करना, मैं एक संस्था भी चलाती हूँ, कोशिश नाम की एक संस्था है जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलाती है, तो मैंने ये सारे चीज़ें ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न आने से पहले ही की है।
आपका साथ क्या आपके परिवार ने दिया? आपने ये रास्ता खुद कैसे तय किया?
मेरी मम्मी ने थोड़ा बहुत मेरा साथ दिया था, तो वो थोड़ा बहुत जो साथ था मेरे साथ, मैं उसी थोड़े बहुत साथ को लेकर बहुत आगे बढ़ी और आज मैंने सेक्स चेंज करवाया है। आज आई एम अ फीमेल नाउ। जब औरत मैं नहीं थी तब मेरा नाम संजय राम था, और लेकिन मुझे लगता है कि मैं औरत बचपन से ही थी, मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं तभी से औरत थी, लेकिन हाँ मेरा जो शरीर है वो शरीर मेरी आत्मा से अलग था। अभी जो शरीर और आत्मा दोनों मिल गए हैं तो अब समाज के हिसाब से मैं औरत हूँ।
संजना, ये बताएं कि सरकारी स्कूल में नौकरी, तो उस वक्त आपने क्या बताया अपने बारे में, वो कैसे मिली आप?
तो उस समय मुझे मेल के हिसाब से ही अप्लाई करना पड़ा, मेल के हिसाब से ही मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो मुझे अप्लाई भी वैसे ही करना पड़ा। पर लेकिन अभी मैंने वहाँ पे लेटर दे दिया है, वहाँ पे मेरे नाम चेंज हो गए हैं, सब कुछ चेंज हो गया, तो अभी बहुत सारा चेंजेस आया है। मुझे लगता है कि हमें अप्रोच करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से 2013 में जब मैं अप्लाई की कि मेरी नौकरी शायद चली जाएगी, पता नहीं मैं नाम चेंज करा रही हूँ, जेंडर चेंज करा रही हूँ, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब मैं अप्लाई की तो मैंने देखा कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्टेंस मिला स्कूल काउंसिल से।
संजना राम से बात कर रही थी दिव्या आर्य। महानगरों में घरेलू काम करने पहुंची झारखंड की आदिवासी लड़कियां शारीरिक शोषण का शिकार बनती रही हैं। इसी शोषण की वजह से वो वापस बच्चे लेकर लौट रही हैं। इन बिन ब्याही माओं के बच्चे झारखंड के आदिवासी समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं। पेश है झारखंड के सिमडेगा से बीबीसी संवाददाता सलमान रवि की रिपोर्ट।
जंगलों से घिरे झारखंड के सिमडेगा जिले का ये टुमरी टोली गांव है, जहां अपने कच्चे मकान के अंदर गांव की बड़ी माँ अपने नाती सूरज को लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही है। अब ये इनकी रोज की जिम्मेदारी है। उनकी बेटी महानगर काम करने गई तो जरूर, मगर वहां वो शोषण का शिकार हो गई और बिन बिहाए वो अपने साथ एक बेटे को ले आई। बेटी वापस महानगर लौट गई और पीछे गांव में अब उसके बच्चे की जिम्मेदारी उसके परिवार के लोगों पर आ टिकी है।
समय हमको सोलाता अपने सोलाता सुखता है ना, ए बड़ी में गाना गा, ए काका बोल के।
जिले के कुरडेग प्रखंड में अब महानगरों में शोषण का शिकार हुई ऐसी बिन बिहाई माओं के बच्चे यहाँ के आदिवासी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। इन्हीं में से एक है एकता, जो अब 8 साल की हो गई है। एकता से मेरी मुलाकात पहाड़ी पर स्थित गांव के सरकारी स्कूल में हुई।
गिरजा घर जगह है।
रहती कहाँ है?
अंबा टोली, ये इधर है।
यहाँ किसके साथ रहती हो तुम?
मेरा दादी, दादू और मामी और मामा।
मामी, अच्छा, मामा मामी के साथ रहती है
जी।
अच्छा, तो तुमको मन नहीं करता माँ के साथ रहने का जाके?
लगता है।
तो बोलती नहीं हो माँ को?
नहीं बोलता।
और पापा?
नहीं है।
इसी इलाके के रहने वाले हैं सुबेदार टिर्की, जिन्होंने अपनी साली की बेटी को अपना नाम दिया है। पेशे से स्थानीय क्रिश्चियन मिशनरी के प्रचारक सुबेदार टिर्की ने अब 6 साल की इस बच्ची के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है।
जो करीब 8 साल की है।
और साली क्या करती है?
साली अभी तो बाहर कमाने गई है, अब से वो तो नहीं बता पाएंगे जब हम शादी नहीं की उससे पहले से।
अच्छा, तो वो बच्ची को आप पाल रहे हैं?
हाँ, पिताजी का नाम मेरा है उसमें, पिताजी समझिए कि हम मैं ही हूँ।
आपने नाम दिया?
हाँ।
अच्छा,
क्योंकि पिताजी के लिए हम ही को रिक्स उठाना पड़ा ना, इसलिए हम ही पिताजी उसका बन गए।
टोली टोमरी की सपना ने अपने सपनों को अपनी छोटी बहन की 2 साल की बेटी के नाम कर दिया है। सपना चाहती तो वो अपना घर बसा सकती थी, मगर नन्ही महक की सारी जिम्मेदारी अब उन्हें उठानी पड़ रही है।
बड़ी माँ?
बड़ी माँ का मतलब
बहन से बड़ी
मौसी?
माँ से बड़ी, माँ से बड़ी।
बड़ी मौसी हैं। अच्छा, तो माँ कहाँ रहती है?
मुंबई। अभी गई है, सुनाई आई है, क्रिसमस में आएगी।
शादी हुई वहाँ पे?
बहन अभी नहीं हुई है, अभी कुंवारी है। समस्या तो है, मुंबई दिल्ली में ना लड़का लोग लड़की लोग को बर्बाद करके छोड़ देते हैं और रखते नहीं हैं, इसलिए बच्चों लोग का जन्म के बाद नहीं रखते हैं हम लोग, तो छोड़ देते हैं तो माँ लोग का घर में रहती है, माँ बाप का घर। अभी मेरा पापा है, खुद गोद लिया है बच्ची को, मैं ही करती हूँ। पापा है वो पढ़ाने लिखाने के लिए वो पैसा रख रहा है अपना, इसका भविष्य को बनाने के लिए हम लोग करेंगे। आपकी माँ बाहर में रहती है, ऐसा
आप लोग आप क्या करते हैं?
घर नहीं रहती हूँ।
आपके पति?
मेरा मैरिज नहीं हुआ है।
आपकी भी नहीं?
नहीं जी। अच्छा,
तो बस यही बच्ची की देखभाल करती
जी सर।
और घर में घर का खर्च कौन चलाता है?
पापा।
पापा चलाते हैं
जी।
और वो क्या करते हैं?
पापा तो रिटायर हुए हैं आर्मी डिपार्टमेंट।
झारखंड के सिमडेगा और गुमला में ऐसे कई आदिवासी परिवार हैं जो इस तरह के बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपने अरमानों का रोज गला घोट रहे हैं, मगर महानगरों की चकाचौंध से आकर्षित होकर जाने वाली कम उम्र की आदिवासी युवतियों का पलायन बदस्तूर जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता नील जस्टिन बेक ने इस बढ़ती हुई समस्या के लिए समाज और सरकार दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया।
काम के लिए जो चले जाते हैं, दूसरे के प्रलोभन पे, साग बाग पे, जो दिल्ली चले जाए, कहीं गोवा चले गए, बॉम्बे चले गए, वहाँ लोगों के साथ अवैध रूप से जो संबंध होता था, उसी से जो बच्चा हमारे यहाँ जो पैदा हो रहा है और वो सीधा घर आ रहे हैं और आज ये माँ बाप के ऊपर छोड़ जा रहे हैं और कोई उपाय, दूसरा उपाय भी नहीं है, वो घर में ही छोड़ के फिर दोबारा चले जा रहे हैं। और इस पर सामाजिक रूप से जितना सार्थक प्रयास होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, और सरकार के ओर से भी जो पॉजिटिव पहल होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा।
हालांकि कुरडेग में तैनात राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज कुमार कहते हैं कि उनके इलाके से लड़कियां स्वेच्छा से ही महानगरों की तरफ ज्यादा जा रही हैं, ना कि मानव तस्करी की वजह से।
कुरडेग से जो एक्सप्लॉइट, यहां से जो महिलाएं या बच्चियां लड़कियां जाती हैं, वो ज़्यादातर लोग अपने शौक से जाते हैं, यहाँ चकाचौंध देख करके बाहर जाते हैं यहाँ पे, और चूँकि इनके बहुत सारे मिशनरी से भी कनेक्शन रहे हैं तो वो लोग थोड़ा खुले विचार के होते हैं और दूर दूर तक वो जाने में परहेज नहीं करते, बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन अगर कोई स्वैच्छिक पलायन करता है या किसी कारण से जाता है, आइदर फॉर एम्प्लॉयमेंट और फिर अदर रीजन्स, है ना, तो यहाँ से लोग अंडमान तक जाते हैं और मुंबई, दिल्ली, इन सब बड़े शहरों में जाते हैं।
फैल रही बेरोजगारी, अभाव और गरीबी ने जंगल के रहने वालों को महानगरों के कंक्रीट के जंगलों की चमक दमक की तरफ आकर्षित जरूर किया है। झारखंड के आदिवासी समाज को सरकारी उदासीनता की एक बड़ी कीमत चुकाने को अब मजबूर होना पड़ रहा है। उनके गीतों में मक्खन और रोटी भी नसीब होना जैसे कोई बड़ा सपना ही है। सलमान रावी, BBC, कुरडेग, सिमडेगा।
और अब आइए सीधे चलते हैं विंबलडन नपुर कृष्ण के पास। आज तो कई दिलचस्प मुकाबले होने हैं, नडाल, मरे, फेडरर सभी अपने पहले राउंड के मैच खेल रहे हैं। क्या समा है अपूर वहां पर?
जी रेहान, आज बड़ा ही अच्छा दिन है विंबलडन के लिए, एक से एक मैच हैं और पहला मैच जो आज था वो पिछली बार की महिला विजेता जो है पेट्रा क्विटोवा, उनका मैच था और बड़े आराम से उन्होंने अपना ये पहला मैच जीता और केवल 35 मिनट में उन्होंने नेदरलैंड्स की किकी बर्टन्स को 6-1, 6-0 से हरा दिया और अब निश्चित रूप से वो अपना तीसरा विंबलडन जीतने की के रास्ते पर आगे बढ़ गई हैं। और उसके बाद सेंटर कोर्ट पर उतरे राफेल नडाल, पिछली बार के उपविजेता और 7 बार के विंबलडन चैंपियन, और जबरदस्त खेल दिखाते हुए उन्होंने बोस्निया हर्जेगोविना के दामिर जमहूर को 6-1, 6-3, 6-3 से सीधे सेटों में हराया। और उसी तरह से नडाल, उन्होंने भी काफी अच्छा खेला, 2 बार के विंबलडन चैंपियन, उन्होंने आराम से अभी अभी अपने प्रतिद्वंदी को हराया 6-4, 6-2, 6-4 से। और ये 3 मैच अभी हो चुके हैं और अभी एंडी मरे वो सेंटर कोर्ट पर उतर आए हैं, काफी उनको लेकर एक्साइटमेंट है यहाँ ब्रिटेन में, 2013 के विजेता और जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, उनका मैच अभी होना है। और उसके बाद आज ये जो फ्रेंच प्लेयर हैं जो विल्फ्रेड चोंगा, उनका भी मैच हुआ जो अभी चल रहा है, और थॉमस बैडिक चेक रिपब्लिक के प्लेयर हैं जो 6th सीड है उनकी और 2010 में वो उपविजेता रहे हैं, उनका भी मैच होना है। साथ ही पिछली बार की सेमीफाइनलिस्ट सिमोना हालेप, उनका भी मैच अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा। रेहान,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपूर्व कृष्ण। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। ग्रीस ने इस बात की पुष्टि की है कि वह आज अपना कर्ज चुका नहीं पाएगा। इस बीच ग्रीस को दिवालियापन से बचाने की कोशिशें जारी हैं। इंडोनेशिया के मैदान शहर के रिहायशी इलाके में सेना का एक परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ईरान के विदेश मंत्री जावद जरीफ ने कहा है कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया के बड़े देशों से ईरान की बातचीत नाजुक मोड़ पर है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आत्मघाती हमलावर ने नेटो के सैन्य दल को अपना निशाना बनाया है। इस हमले में कम से कम एक नागरिक की मौत हो गई है और 22 घायल हुए हैं। यमन की राजधानी सना में कार में बम विस्फोट हुआ, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी घटना चक्र कार्यक्रम में। स्टूडियो संभाला था कुणाल शर्मा ने। रेहान फजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।